कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील भगवान लीलामृत प्रकरण 52। मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है। पृष्ठ संख्या 644। जय पताका स्वामी ने ढाका में हिंदू और मुसलमानों को हॉल में दिए गए अपने धर्मोपदेश का भव्य वर्णन किया। जय पताका स्वामी ने कहा, बांग्लादेश में वर्षों से कोई साधु नहीं रह गया था। वह प्रभुपाद के बिस्तर के निकट फर्श पर एक बालक की भांति बैठा जोरदार विजयपूर्ण स्वर में बोल रहे थे। वहां के लोग कृष्ण भावनामृत के बारे में सुनने को उत्सुक हैं। 10,000 लोग एकत्र हुए थे। यह उस देश के इतिहास में हिंदू या मुसलमानों का सबसे बड़ा उत्सव था। मुसलमान भी रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य के संबंध में कुछ नहीं जानते। बहुतों ने पूछा कि हमारे पास भगवान चैतन्य पर कोई पुस्तक है, वे उसे पढ़ना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद बीच में रुके किंतु जीवन स्वर में बोले, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं पुस्तक है। तो जयपताका स्वामी ने बताया कि उन लोगों को वहां एक मंदिर बनाने की आशा है। उन्होंने कहा, अनेक युवा जन आते हैं और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करते हैं। वे हमारे अर्च विग्रह उपासना के बारे में प्रश्न पूछते हैं, हमारे गुरु महाराज के बारे में और हरि नाम के बारे में। सभी प्रश्न बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। वहां CIA की कोई अफवाह नहीं है, हमारे बारे में कोई खराब बातें नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं है। और क्योंकि वे कुछ उत्पीड़ित हैं, इसलिए कृष्ण में विश्वास करने के बारे में उन्हें सदैव चुनौतियां दी जाती हैं। इसी कारण वे सब कुछ जानने और समझने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ CIA की चर्चा हो रही है अभी भी। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है, बड़ा कॉमन। लोग पूछते हैं हमसे कि जो इस्कान है ये तो विदेशी संस्था है, आपको हिंदुस्तानी को संस्था नहीं मिली थी ज्वाइन करने के लिए? एक प्रश्न आता कि आप तो डॉक्टर हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो आपने विदेशी संस्था कैसे ज्वाइन कर ली? किसी हिंदुस्तानी संस्था को ज्वाइन करते, पहला सवाल। सवाल नंबर 2 कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो संस्था है ये भारतवर्ष से पैसा इकट्ठा करती है और विदेशों में भेज देती है। ऐसे मैसेज आते थे कि नहीं आते थे? आजकल जरा बंद है, आजकल नहीं आ रहे हैं, पर पहले बहुत सर्कुलेट किया करते थे। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं, हमें तो पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, जन्माष्टमी त्योहार इसके दौरान जो है बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। तो उन लोगों को समझाना पड़ता है। हमारे फिर काउंटर मैसेज भी आते हैं उसको समझाने के लिए, इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, अभी इसको पढ़ लो। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, ढाका तो बांग्लादेश में आ गया है, वहां पर जो है CIA की कोई अफवाह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात इसमें जो है बड़ी सुंदर कही कि सभी प्रश्न बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति सुनने के लिए आ रहा है या जानने के लिए आ रहा है वो इंटेलिजेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न कर सकता है। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न करेगा, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न कैसे कर देगा? मूर्ख व्यक्ति जो है वो आप समझते हैं कि बड़ा अकलमंदी का सवाल करेगा, हाँ भाई बहुत कमाल है, मूर्ख व्यक्ति ने कितना बड़ा सवाल, कितना बढ़िया सवाल कर दिया। तो वो चीज हम आज यहां भी देखते हैं। हम जब प्रचार करते हैं तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंशिया है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो भी ऑडियंस में होंगे और वो भी बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करेंगे और हमें उसका बुद्धिमत्तापूर्ण ही उत्तर देना है। प्रचार कैसे होगा? कमरे में बंद होकर बैठने से प्रचार तो होगा नहीं। प्रचार तो होगा जब हम समाज में लोगों से मिलेंगे, कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम हैं, भक्ति वृक्ष है, नाम हट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं। मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं, घरों में प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे सेंटर्स में प्रोग्राम होते हैं। तो वहां पे एक हम प्रश्न करते हैं कि आज पहली बार कौन आया, तो दो चार पांच हाथ खड़े हो जाते हैं कि हम पहली बार आए। तो हम चाहते हैं कि वो जो जुड़ जाएं भगवान के साथ, वो जुड़ जाएं हरि नाम के साथ, ऐसी हमारी इच्छा रहती। पर उनके कुछ प्रश्न होते हैं। हमने एक बड़ा कॉमन प्रश्न जो है वो फेस किया, हम जब प्रचार करते हैं तो एक कॉमन प्रश्न जो आता है कि मैं तो फिजिक्स का पीएचडी हूं, मैं तो फिजिक्स का मैंने जो है एमएससी किया है, मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया है, मैं केमिस्ट्री का पीएचडी, मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं भगवान हैं, भगवान हैं, उसको फिजिक्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से आप कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रमाण देंगे कि भगवान है? कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है कॉलेज में, स्कूल में, बारहवीं तक तो पढ़ी होगी सभी ने, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उस केमिस्ट्री या फिजिक्स के माध्यम से आप कैसे साबित करेंगे कि भगवान है, बताइए। केमिस्ट्री के माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से कैसे साबित करेंगे कि भगवान है? कोई, अब हमें उसको उत्तर देना है, हमें उसको जो है प्रीच करना है, प्रचार करना है, उसको समझाना है, तो हम कैसे समझाएंगे? सवाल उसने अकलबंदी का किया, क्योंकि उसकी अकल वहां तक, वही तक है, उसकी जो बुद्धि है वो फिजिक्स तक है, वो केमिस्ट्री वाले की बुद्धि केमिस्ट्री तक है, और उसी में वो प्रश्न कर रहा, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाउ डू वी आंसर? आईआईटी ग्रेजुएट बैठे हुए, फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से भगवान हैं, इसका प्रमाण कैसे देंगे? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर, सिंपल बात करते हैं, और सिंपल बात करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि अगर केमिस्ट्री के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएशन का सवाल पूछा जाए तो क्या उत्तर दे पाएगा? उत्तर दे पाएगा क्या? या फिजिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट से या ग्रेजुएट से केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाए तो क्या वो उत्तर दे पाएगा? इसका मतलब यह है कि फिजिक्स का उत्तर देने के लिए फिजिक्स वाले के पास जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का उत्तर प्राप्त करने के लिए केमिस्ट्री वाले के पास जाना पड़ेगा। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा भी एक बात बता, तुझे पता है मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता? कहता नहीं सर। मैंने कहा ये जो है ये ह्यूमन एनाटॉमी है। कहता जी वो तो नहीं आता। तो मैंने कहा उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए तुझे उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो कि ह्यूमन एनाटॉमी का एक्सपर्ट है, वो बताएगा कि मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता है। कहता हाँ जी ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा तुम एक बात बताओ कि तुम भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति के पास जाओ जो भगवान के बारे में एक्सपर्ट है, वेदों का ज्ञाता है, भगवद गीता का ज्ञाता है, भागवतम का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है। तुम फिजिक्स के ज्ञाता से भगवान को क्यों जानना चाहते हो? तुम केमिस्ट्री के ज्ञाता से भगवान को क्यों जानना चाहते हो? समझ में आ गई बात? हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा उससे जाके समझो, उससे जाके ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल किया है तुमने, हम भी बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देंगे, पर एक बात का मेरी जवाब दे दो। बोला पूछिए सर। मैंने कहा हवा के अंदर एच भी है हाइड्रोजन, ओ भी है, O2 है भी है, ऑक्सीजन दोनों है कि नहीं? हाँ सर दोनों है। तो मैंने कहा तुम टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला के पानी बना के दिखा दो, पानी बना के दिखा दो। हवा में है पर उनसे मिलके पानी नहीं बनता। पानी तो कोई एक सोर्स है, कोई ऐसी सुपर ह्यूमन पावर है जो कि इन दोनों को मिला के पानी बना देती है। मैं तुम्हें देता हूं, हाइड्रोजन के सिलेंडर आते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, गुब्बारों में हवा भरते हैं ना, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन जो है मरीज को दी जाती है। मैं दोनों सिलेंडर तुम्हें देता हूं, दोनों को मिला दो आपस में और पानी बना के दिखा दो। नहीं सर पानी तो नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं बनेगा तो कोई तो बना रहा है ना, फार्मूला क्या है पानी का? बोले H2O। तो मैं कोई तो बना रहा है। हाँ सर कोई बना रहा है। मैंने कहा कौन है जो बना रहा है? साइंटिस्ट से तो बना नहीं, केमिस्ट से बना नहीं, केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बना नहीं, इसका मतलब है कि उससे भी बड़ा एक्सपर्ट है, और जो उससे भी बड़ा एक्सपर्ट है वो भगवान है। सिंपल सी बात है, तो बात समझ में आ जाती है। तो यहां पे जो है बहुत सुंदर चर्चा आ रही है कि सभी प्रश्न बुद्धिमता पूर्ण होते हैं। इंटेलिजेंट पीपुल आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर आज हम जो है अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, इतने हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इतने लोग भक्ति में आ रहे हैं, तो इसीलिए आ रहे हैं कि देर आर इंटेलिजेंट पीपल, बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास बहुत जुड़े हुए हैं जो कि ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और जो व्यक्ति एक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सकता है वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर तो दे ही देगा, उसको उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि न दे पाए, ही विल बी एबल टू आंसर, क्योंकि वो इंटेलिजेंट पर्सन है। तो यहां जो उन्होंने कहा कि इसलिए कृष्ण में विश्वास करने के बारे में उन्हें सदैव चुनौतियां दी जाती हैं, चुनौती चैलेंज, हम कैसे विश्वास करें कि भगवान है, मान लिया। अब आप कहते हो कृष्ण भगवान है, हम कैसे विश्वास करें कि कृष्ण भगवान है, हम तो मंदिर में जाते हैं, हमारे लिए सारे ही भगवान है, एक भगवान थोड़ा है, मंदिर में तो हमारे लिए सारे ही भगवान है, सभी की पूजा अर्चना करते हैं, आप कहते हैं कृष्ण ही भगवान है, कैसे भाई? राष्ट्रपति एक होता है कि अनेक होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक होता है कि अनेक होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक होता है कि अनेक होते हैं? गवर्नर एक होता है कि अनेक होते हैं? तो भगवान एक है कि अनेक है? कोई फर्क नहीं है जी, सारे बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, सारे बराबर हैं। ये धारणा, ये विश्वास उनके मन में बैठा हुआ है, उस विश्वास से उनको बाहर निकालना और ये साबित करना कि कृष्ण ही भगवान है, इंटेलिजेंट पर्सन जिसको इस चीज का ज्ञान है वही कर सकता। हाँ, कई लोग जो है कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कुछ मजाकिया तौर पे साबित कर देते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। पूछा कैसे? बोले एक विदेशी व्यक्ति आया था भारतवर्ष के अंदर, वो मंदिरों में दर्शन करने गया और बाद में उसने फैसला किया कि कृष्ण ही भगवान है। ने पूछा, अभी तुमने ये फैसला कैसे किया? कहता है, मैं जिस भी मंदिर में गया ना, जितने भी वहां पे जिनको कथा तथा कथित भगवान कहते हैं, वो सब हथियार लिए बैठे हैं, किसी के पास धनुष है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास ये है तलवार है, मतलब किसी हर एक के पास कुछ ना कुछ हथियार है। बोला, फिर? बोला, मैं कृष्ण के मंदिर में गया, उसके बाद बांसुरी है, तो कुछ करते ही नहीं। तो जो जिसके पास करने को कुछ नहीं है, हर चीज ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है, अरेंज हो रही है, वही भगवान है। तो लोगों ने इस कहानी के माध्यम से भगवान को प्रूव कर दिया। परंतु यहां बहुत अच्छी बात है कि इसी कारण वे सबको जानने और समझने के लिए उत्सुक है। पीपल वॉन्ट टू नो। सवाल यह है कि हम में से समझाने वाले चाहिए। हाँ, कभी कभी हम नहीं समझा पाते हैं, बहुत कट्टर है तो इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो इसको जाने, बहस क्या है करनी, अपना माथा क्यों खराब करना। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, 2-4-5-10% नहीं भी होते हैं तो इसको 5-10% में मान लो, इसको छोड़ दो, क्योंकि कट्टर है, समझेगा नहीं। आगे लिखते हैं, श्री प्रभुपाद ने पूछा, मुसलमानों के बारे में क्या समाचार है? ये करंट भी आज सिनेरियो यही है। जयपताका स्वामी ने कहा, जब प्रभा विष्णु ने ढाका में एक स्थान पर व्याख्यान दिया, तो एक मुसलमान से सुनकर उनके पास आया और बोला, आप जो धर्मोपदेश कर रहे हैं वे आज के युग में बहुत व्यवहारिक है। मेरे जिले में हिंदू बहुसंख्यक हैं, किंतु जब वे अपने साधुओं को बुलाते हैं, धर्मोपदेश कराते हैं, वे मुझे बहुत पुराने ढंग का और अस्वीकार्य लगता। जो आज की डेट में जो है हम टीवी पे भी देखते हैं, बहुत सारे साधु, बहुत सारे संत, बहुत सारे गुरु आगे प्रचार करते हैं, वैसे ही उस जमाने में भी था, किंतु आपका धर्म उपदेश उत्साहित करने वाला है, उत्साह पैदा करता है। प्रचार ऐसा होना चाहिए, उपदेश ऐसा होना चाहिए कि सुनने वालों के मन में उत्साह पैदा हो जाए। इसलिए उसने एक कार्यक्रम की व्यवस्था की। अंततः मैं जितने मुसलमानों से मिला उन सब की उसमें रुचि लगी, क्योंकि हमने उनके सामने भी चीजें रखी जो उन्हें स्वीकार्य थी। वे कहते हैं, आप हिंदू? हम कहते हैं, नहीं, हम वैष्णव हैं। वैष्णव का अर्थ ये होता है, हम केवल एक विश्व में विश्वास करते हैं, उनके बराबर दूसरा कोई नहीं है। आप भी इसी चीज में विश्वास करते हैं? अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो इस्कॉन के अंदर बहुत सारे हजारों लाखों क्रिश्चियंस हैं और हजारों की तादाद में मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में प्रचार हो रहा है, सऊदी में प्रचार हो रहा है, चाइना में प्रचार हो रहा है, बहुत जगह प्रचार हो रहा है। मैं एक जगह की आपको छोटी सी घटना सुनाता हूं। दक्षिण भारत में जगह है कोल्हापुर, कोल्हापुर। एक विकलांग व्यक्ति जिसके आज की तारीख में दिव्यांग कहते हैं, वो जॉब करने जाता है बस में, अपने घर से कोई 25-30 किलोमीटर के आसपास। तो उसको जो है कंसेशन मिलता है बस का टिकट में, फेयर में उसको मंथली पास बना रखा है, तो कंसेशनल पास है। इस्कॉन में आता है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, भक्ति करता है, चैंटिंग करता है, भगवत गीता पढ़ता है, और उसने जो है विचार किया कि मुझे बैक टू गॉड हेड जो अपना मैगजीन है हिंदी का भगवत दर्शन, उसकी मैं कुछ कॉपियां ले लेता हूं और बस में लोगों को पढ़ने के लिए दे देता हूं। उसने कॉपियां ली, अपना जो उसका जो बस पास से जो पैसा बचता था, जो कंसेशनल अमाउंट था, वो कॉपियां लेके जो है उसने अपना बस के अंदर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि इसको पढ़िए। और अगली सीट पे ड्राइवर के पास, मतलब जो सीढ़ी के पास सीट होती वहां बैठ जाता था, उठते ही और जाती बार लोग उसको भगवत दर्शन वापस कर देते थे। नेक्स्ट डे फिर दे देता था। सवारियां कुछ फिक्स होती थी, कुछ नई होती थी, चेंज होता था, तो लोग भगवत दर्शन पढ़ते रहे। तो उसके बाद उसने जो है भगवत दर्शन करते करते उसमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र का थोड़ा सा 5 मिनट का कीर्तन कराना शुरू कर दिया। तो एक सवा महीने के बाद किसी ने उस बस के बाद जो है लिखवा दिया हरे कृष्णा बस, जैसे हम लोग लिखवा देते हैं, जैसे मन सड़क पे लगवा देते हैं हरे कृष्णा मार्ग। आजकल भी हमारी गाड़ियों के पीछे हरे कृष्ण लिखा हुआ है, किसी ने बहुत सुंदर से स्टिकर चिपका रखे हैं व्हाइट कलर के, उस पर लगा दिया हरे कृष्णा बस। तो सबको जो है ड्राइवर, कंडक्टर, बस स्टॉप जितने लोग थे, अरे हरे कृष्णा बस आ गई, हरे कृष्णा बस आ गई, तो एक वो प्रचार होना शुरू हो गया। अब भगवत दर्शन जो है जो लोग पढ़ रहे थे, अब उनको वही मैगजीन रोज मिल रही थी, क्योंकि जो महीने में पैसा बचता था उसी की तो मैगजीन लेता था, वो एक्स्ट्रा मनी तो था नहीं, तो वही मैगजीन रोज पढ़ने को मिलती थी। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा है कि अब अगली मैगजीन कब मिलेगी? बोला जब मेरा अगला पैसा बचेगा। मैं तो, मेरा इतना टिकट लगता है, मेरे को इतना कंसेशन मिलता है, जो मुझे कंसेशन मिलता है उसका मैं मैगजीन ले लेता हूं। तो लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसने और मैगजीन्स खरीद ली। तो उसने जो है लोगों को मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद जो है लोगों ने कहा कि ये मैगजीन हम अपने घर वालों को भी पढ़ाना चाहते हैं, क्या तरीका है? उसने कहा इसमें जो है एक मंथली सब्सक्रिप्शन है, इतना पैसा आप दे दीजिएगा, आपको रसीद मिल जाएगी और आपके घर मैगजीन आ जाया करेगी। तो उसी बस में लोगों ने उसको मंथली सब्सक्रिप्शन देना शुरू कर दिया, सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद एक दिन जो है वो बैठा हुआ था, मैगजीन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो देखते देखते जो है 2-4 बसों वाले और थे, वो भी आए कि हमको भी ऐसी मैगजीन दो, हम भी अपने बस में पढ़ाएंगे, हम भी बस में पढ़ाएंगे। तो हरे कृष्णा की एक के बजाय 4 बसें हो गई, सब पे लिख दिया गया हरे कृष्णा, वो मैगजीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। कुछ 6 महीने निकले होंगे, 5-6 महीने निकले होंगे, तो एक दिन वो जो है अपना मैगजीन इकट्ठी कर रहा था, तो एक फैमिली आ गई दाढ़ी वाली, कह लगा हम आपकी ये मैगजीन पढ़ते रहे हैं, हमको भी आप जो है दे दीजिए सब्सक्रिप्शन, हमारे घर वाले भी इसको पढ़ेंगे। और वो एक नहीं, 5-6-8 लोग थे, सारे मोहम्मदंस थे, सारे मुसलमान थे। कि बस में एक एडवांटेज होता है, बस में एक एडवांटेज होता है, समझिएगा। 99 के अंदर, 98 के अंदर हमने जब प्रचार शुरू किया दिल्ली में, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स, एक आधा प्रोग्राम होता था, तो हमने जो है यहां से वृंदावन के लिए बस करी कि हम बस में लोगों को वृंदावन के दर्शन करा के लाएंगे। तो हमारे साथ एक भक्त थे, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि बड़ा गोल्डन अवसर है, ये सुनहरा अवसर है। क्या है कि 3.5 घंटे के लिए बस वाले तुम्हारे कब्जे में हैं, ना तो निकल सकते हैं ना उतर सकते हैं, तुम रोकोगे तो उतरेंगे, नहीं तो उतरेंगे नहीं। तो अब जो है जम के प्रचार करो। तो हम लोग छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम ले गए थे, तो हम 3.5 घंटे में, 2 घंटे के आसपास हमने प्रचार किया, 1.5 घंटा लोगों ने गप्पे मारे। पर 2 घंटे का प्रचार, उसमें कुछ लोग जुड़े और 2 ही घंटे हमने वापसी में किया। तो बस का एडवांटेज क्या होता है कि लोग बस से निकल के भाग नहीं सकते। इसी तरह हम साउथ में जाते हैं, हमारे वेस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, तो वहां पर जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेन्स में होता है, बसेस में होता है, कि ट्रेन वाला पैसेंजर जो है वो भागेगा कहीं नहीं, भागेगा नहीं। पूना टू दौन, दौन टू पूना, पूना टू मनवार, मनवार टू पूना, नीचे साउथ में जो है अलग अलग जगह पे, बहुत बहुत जगह पे प्रचार होता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रीचिंग जो है वो ट्रेन्स में होती है, बसेस में होती है। तो यहां जो है चर्चा आ रही है कि ईश्वर एक है, और ये बात जो है मुसलमान भी स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद ने यही कहा है कि हम वैष्णव हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है कि हम एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये बेसिक फिलॉसफी है वैष्णव, जो हमें सिखाई गई, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है। आप भी इसी चीज में विश्वास करते हैं? और श्री प्रभुपाद ने कहा सत्य है असमर्थव, ईश्वर के समान है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। फिर जयपताका स्वामी ने कहा अनेक हिंदू और मुसलमान युवक हमारे संघ में आएंगे, किंतु मुझे विश्वास है, किंतु इस समय हम अपने संघ का पंजीयन कर रहे हैं और अपना स्थान पा रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने पूछा तुम्हें अभी वह मिला नहीं, स्थान को प्राप्त करो और संघ का पंजीयन कराओ, रजिस्ट्रेशन। श्री प्रभुपाद ने आगे कहा जय पताका को सब कुछ बहुत मन लगाकर करना चाहिए। उन्होंने समर्थन देते हुए कहा यह बढ़ता जा रहा है, मतलब कार्यक्रम प्रोग्राम संघ जो है बढ़ता जा रहा है। जब रामेश्वर स्वामी कीर्तन के लिए कमरे में आए तो श्री प्रभुपाद के लिए कृष्ण पर 3 पुस्तकों के नए संस्करण ले आए। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुस्तकों की बिक्री किस तरह चल रही थी। श्री प्रभुपाद ने कहा अपना स्वास्थ्य खूब ठीक रखो, जितने वर्ष संभव हो जीवित रहो, कृष्ण भावना भावित बनो, तब अगले जीवन में तुम धाम पहुंच जाओगे, स्थायी जीवन प्राप्त करोगे, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं है, राजनीति नहीं है, निजी अभिलाषा की पूर्ति की बात नहीं है, किसी के व्यक्तिगत उद्धार की लालसा का लेश नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि इसमें कोई व्यक्तिगत इंद्र सुख भोग की भावना है? कह सकता है कोई? या तुम कह सकते हो यह मेरी व्यक्तिगत इंद्रिय सुख भोग की भावना है? कृष्ण भावनामृत में ऐसी कोई चीज नहीं होती। हमारी यही इच्छा है कि हम भक्तों के साथ रहें और अपने पूर्वजों का मिशन पूरा करें, यही हमारी अभिलाषा है। अभिलाषा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। हमारा वास्तविक स्वार्थ कृष्ण की इच्छा की पूर्ति है, अतः इसे सावधानी पूर्वक करो। और यदि अमरीकियों में 1/4 वैष्णव बन जाएं, तो पूरा संसार बदल जाएगा। यह बहुत बढ़िया बात करी है कि अभिलाषा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। डिजायर एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है, स्वाभाविक है, डिजायर्स आती हैं, मन भटकता है। पर यहां चर्चा क्या हो रही है कि अभिलाषा अर्थात डिजायर भौतिक होनी चाहिए या आध्यात्मिक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? भौतिक सुख भोग की कामना की बात ना नहीं हो रही, उसकी डिजायर नहीं होनी चाहिए। डिजायर क्या होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकूं, मैं किस प्रकार अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकूं, ये डिजायर मेरे मन में होनी चाहिए, ये इच्छा मेरे मन में होनी चाहिए। और यही इच्छा की पूर्ति कैसी होगी, इच्छा डेवलप कैसी होगी, उसको सिखाने के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, टेंपल्स हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं बुद्धिमता पूर्वक, तो हमारी डिजायर्स हौले 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 कम होती चली जाती है। मन में एक अभिलाषा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है और उसका पालन करना। आप में से कितने लोग ये समझ गए हैं कि हमें भौतिक संसार में नहीं रहना है और भगवान के धाम जाना है, हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा है जो ना जाना चाहता हो? कोई नहीं, मन नहीं मानता। यहां रहने को अब मन नहीं मानता। अब मेरा एक प्रश्न है, भगवान के धाम आप कैसे जा सकते हो? व्हाट इज दी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन? आपकी योग्यता क्या है कि आप भगवान के धाम चले जाओ? क्या कंडीशन अप्लाई करती हैं कि आपको भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाए? क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं? जाना तो चाहते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं है कोई नहीं जाना चाहता। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कि नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, सब जाना चाहते हैं। तो मेरा उसके बाद अगला प्रश्न यह है कि हमारे पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हाँ जी प्रभु जी, हाथ खड़ा किया आपने, बताएं योग्यता क्या है, बताएं। भगवान के प्रति समर्पण और ठीक है, भगवान के नामों का उच्चारण, चलिए बताइए। भगवान को स्वामी मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, क्या भगवान आपसे प्रेम करते हैं? बायलैटरल होना चाहिए ना, अपने घर में तभी आने देंगे जब वो आपसे प्रेम करते हैं। तो आप बाहर खड़े होकर दरवाजे पे गाना गाओ, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता। एक लड़का लड़की से कहता मैं तुमसे बड़ा प्रेम कर, लड़की कहती मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करती भाई, बात नहीं बनी ना, बात नहीं जमी। उसको और सिंपल करिएगा, भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, ठीक है चलिए मान लिया, आगे क्या करेंगे? गुरु के आदेश का पालन कर लिया, करते हैं कितने लोग करते हैं? देखिए हम सिंपल बात बताते हैं आपको, आपके बच्चे ने IIT में एडमिशन लेना, IIT और बेस्ट IIT में एडमिशन लेना, और उस IIT में बेस्ट सब्जेक्ट में एडमिशन लेना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए? अब एक स्टेप आगे गए, मैं उससे पहले स्टेप की बात करता हूं, मैं स्टेप जीरो की बात करता हूं। क्या होना चाहिए? मार्क्स अच्छे आने, एक स्टेप आ गए, जाने की डिजायर होनी चाहिए। काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है डिजायर, एक होती है स्ट्रांग डिजायर, स्ट्रांग तीव्र उत्कंठा, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा, IIT में एडमिशन लेने की तीव्र उत्कंठा। अब वो तीव्र उत्कंठा का मतलब है एक बहुत स्ट्रांग डिजायर है जिसमें कि बच्चा कहता है मैं आईटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो जो टीचर है वो कहता है भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए, इसका मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, केबल बंद, टीवी बंद, व्हाट्सएप बंद, फेसबुक बंद, ये बंद वो बंद। लड़का कहता है मुझे मंजूर है, पर मुझे हर हालत में किसी भी कंडीशन में कितनी भी मेहनत करके आईआईटी में जाना है और बेस्ट सब्जेक्ट लेना, मतलब आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। जब तीव्र उत्कंठा होगी भगवान को प्राप्त करने की तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रेम प्राप्त करने की टर्म्स एंड कंडीशंस है, सेवा करने की टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसी सेवा की जाएगी। अब अपनी मर्जी सेवा करोगे कि भगवान के आदेश के अनुसार सेवा करो, कैसी करोगे, डिजायर कैसी होगी, स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, भाई कुछ भी करना पड़े मुझे धाम जाना है, भजन क्रिया चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात निवेदनम, जो भी करना पड़े करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा करूंगा, भौतिक इच्छा सारी समाप्त करूंगा करूंगा, भक्तों की सेवा करूंगा करूंगा, मतलब आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा के लिए गुरु के माध्यम से मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, मैं हर हालत में उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करूंगा क्योंकि मुझे धाम जाना है, मेरा टारगेट धाम जाने का। तो तीव्र उत्कंठा हो गई, वेरी स्ट्रांग डिजायर, वेरी वेरी स्ट्रांग डिजायर, उस स्ट्रांग डिजायर को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, अपनी मर्जी से नहीं। इन्होंने अभी भगवान की सेवा का नाम लिया, सेवा बोली थी ना आपने, सेवा कैसे होती है, भगवान की सेवा कैसे होती है, आपको आती है करनी, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, भक्तों के माध्यम से गुरु के माध्यम से सीखना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं। भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, भगवान आपसे प्रेम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, भगवान संभाव हैं, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं जी, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु के पास था तो उसके पास मित्र आया, उसने कहा भी अब तू मरने वाले हो, अपनी जायदाद आयदाद का फैसला फूसला कर दिया, बोले हाँ कर दिया, बोले चार फैक्ट्रियां थी चारों बेटों को दे दी, चार 400 करोड़ रुपया था 100-100 करोड़ सबको दे दिया, 40 किलो सोना था 10-10 किलो सोना सबको दे दिया, मैंने अपनी तरफ से सबको बराबर बराबर दे दिया, संभव है, कोई फर्क नहीं है, हरेक के हृदय में बैठे। अब वो पूछता अच्छा ये बता कि तेरे को चार बेटों में से कौन सा बेटा प्रिय है, समता का भाव है, बराबरी का बांटा उसने सबको, कुछ दिक्कत नहीं करी, कौन सी बहू सबसे अच्छी लगती है, बोला 2 नंबर बेटा बहुत प्यारा लगता है, 3 नंबर बहू बहुत प्यारी लगती है, 2 नंबर बहू क्यों नहीं लगती, तो मेरी सेवा नहीं करती, 3 नंबर बहू जो है मेरी सेवा मेरे आदेश के अनुसार करती, जैसा मैं चाहता हूं वैसे करती, और 2 नंबर बेटा जो है जैसे मैं कहता हूं वैसे करता, फैक्ट्री है घर है बाहर है, ही फॉलोज माय इंस्ट्रक्शंस। भगवान सबके लिए संभाव है, परंतु प्रेम किसको करते हैं, जो उनके आदेश के अनुसार कार्य करता, उनके आदेश के अनुसार। आप करते हैं अभी नहीं। पिता आए बहुत थके हुए, धूप बहुत थी बाहर, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, हालत खराब हो रही, आगे सोफे पे बैठ गए, बेटे को बुलाया, बेटा जरा टांगे दबा दे, बड़ी थक गई है, बड़ा दर्द हो रही है, बड़ी परेशानी है, आईपीएल का मैच चल रहा है, चौके छक्के चल रहे हैं, सामने टीवी लगा है, सोफे के दीवार के ऊपर बेटा बैठे टीवी देख रहा है, चौका मारा छक्का मारा मजे ले रहा है। अब पिता की सेवा करेगा तो पीठ हो जाएगी, आईपीएल दिखाई नहीं देगा, तो पीछे आ गया, कंधे दबाने लग गया। पिता ने कहा बेटा टांगे दर्द कर रही है, गर्दन दर्द नहीं कर रही है। पिताजी चुप रहो, सेवा हो रही है ना, करवाते रहो। पिता खुश होगा क्या, तो भगवान को खुश करना है तो कैसे करना है, जैसी सेवा भगवान चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवद गीता में, जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरे आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित, दो कंडीशंस और लगा दी। हम कहते हैं ठीक है, गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज तो कहते ही रहते हैं, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, मैं कोई कम हूं क्या? ये भाव क्या हमें धाम ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, क्योंकि हमारी सेवा जो है एज पर इंस्ट्रक्शंस नहीं हो रही है, अपनी मर्जी से हो रही है, अपने भाव से हो रही है। तो यहां सवाल यह है कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है तीव्र उत्कंठा चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? दो कंडीशंस हैं बस, दो ही रास्ते हैं। भगवान की मर्जी चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए उनकी। यस ही इज फिट टू कम टू माय हाउस, ये व्यक्ति फिट है मेरे घर आने के लिए। वो एग्जामिन करेंगे कि क्या इस व्यक्ति ने मेरे लिए जो मेरी इंस्ट्रक्शंस थी उनका स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि नहीं किया। आप खुद ही एग्जामिनर नहीं बन सकते, मैं ही इम्तहान देने वाला हूं, मैं ही परीक्षक हूं, मैं ही निरीक्षक हूं, मैं ही उसका पेपर चेक करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। पेपर कौन चेक करेगा? आपके हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में विराजमान है, कौन चेक करेगा? वो चेक करेंगे। जब वो चेक करेंगे तो डिसीजन देंगे भी हाँ भाई ये व्यक्ति जो है इसने जो कार्य किया है मेरे यहां आने के लायक है कि मेरे यहां आने के लायक नहीं। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। विश्वामित्र जी में और वशिष्ठ जी में एक थोड़ी सी बहस हो गई। क्या बहस हो गई? कहने लगे कि सत्संग का महत्व ज्यादा है या पुण्य कर्मों का महत्व ज्यादा है? इसका महत्व ज्यादा है। तो फैसला नहीं हो पा रहा था तो शेषनाग जी के पास चले गए। शेषनाग जी ने कहा भी ऐसा है कि मैं तो बहुत थक गया हूं पृथ्वी का वजन ढोते ढोते, कोई ऐसा जुगाड़ करो कि मेरा थोड़ा वजन कम हो फिर मैं तुम्हारा उत्तर देता हूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं अपने 10,000 वर्षों के पुण्यों का फल आपको अर्पित करता हूं, 10,000 ईयर्स जो मैंने पुण्य किए हैं उनका फल आपको अर्पित करता हूं। हो गया। वशिष्ठ जी की बारी आई, मैं अपने एक क्षण के सत्संग का फल आपको अर्पित करता हूं। तो पृथ्वी ऊपर उठ गए, शेषनाग जी रिलैक्स हो गए। एक पल बीता, दो पल बीते, आधा मिनट बीता, एक मिनट बीता, दो मिनट बीते। अब विश्वामित्र जी बेचैन हो गए, अरे भी अब तो आप रिलैक्स हो गए हो भगवान, अब तो उत्तर दे दो, अब तो आंसर करो कि कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है। शेषनाग जी कहते हैं भैया एक बात बता, तूने 10,000 वर्षों के पुण्यों का फल मुझे दिया तो पृथ्वी ऊपर नहीं उठी, और इसने एक क्षण के सत्संग का फल मुझे दिया पृथ्वी ऊपर उठ गई, मैं रिलैक्स हो गया, तो कौन बड़ा हुआ? अपने अभी फैसला कर ले, मेरे मुख से क्यों सुनना चाहता? व्हाट डू यू वांट टू हियर फ्रॉम मी? तो सत्संग अर्थात भक्तों का संग करना, भगवान का संग करना, कथा का संग करना, कीर्तन का संग करना, भगवान की जो है नाम रूप गुण लीला धाम उनका संग करना बहुत वैल्यूएबल है। इसी से आपके जो तीव्र उत्कंठा है पूर्ण होती है कि यस एट एनी गिवन कंडीशन आई वांट टू गो टू धाम। कुछ भी करना पड़े जी धाम तो मुझे जाना है। क्या आप करने को तैयार हैं? कुछ भी, कुछ भी। जन्माष्टमी आती है ना, बोले तुम्हारी ड्यूटी पार्किंग में लगा दी है। नहीं प्रभु, ये हॉल में लगाओ ना, ठाकुर जी के दर्शन होते रहेंगे, पार्किंग में क्यों खड़ा करते हो मेरे को? बड़ा मुश्किल है पार्किंग में ड्यूटी करनी। जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको एक परंपरा से ड्यूटी मिली है कि इनको ड्यूटी पे लगाओ, वो आपको ड्यूटी पे लगाता है तो आप उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, मन की बात कहते हैं प्रभु जी हॉल में ड्यूटी लगा दीजिए, बड़ा आनंद आएगा, मैं तो सारा दिन दर्शन होते रहेंगे, कितना सजावट, कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, मजा आ जाएगा। क्या आप अपने मन से काम करना चाहते हैं ना, वो जो आपकी डिजायर है उसको आप फुलफिल तो करना चाहते हो, फॉर ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। आप टीवी भी लेना चाहते हो ना, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस टीवी वाले की होती है, आपकी नहीं चलती, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक साल की वारंटी देंगे, खर्चा ये आएगा, फलाना ये आएगा, इधर ये होगा, उधर वो होगा, तो आप उनके ऊपर चलते हो। और यहां आप जो है भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, तो हाउ इज दैट पॉसिबल। तो यहां पर जो है चर्चा आ रही है, एक बहुत बढ़िया चर्चा है, टाइम तो समाप्त हो गया है, बट मैं ये वाला पैराग्राफ कर देता हूं, बहुत सुंदर बात है। यहां पे शील प्रभुपाद ने कहा, अपना स्वास्थ्य खूब ठीक रखो, जितने वर्ष संभव हो जीवित रहो, कृष्ण भावित भाविन बनो, अपने अगले जन्म में तुम धाम पहुंच जाओगे। अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, क्यों अपना स्वास्थ्य क्यों ठीक रखा जाए, वाई तो कारण होना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी बताएं। चलिए मान ली बात, और इससे भी नीचे आओ, स्वस्थ रहेगा तभी तो भजन होगा। चलो उसे वही बात है, सेवा भजन सेवा है जो उन्होंने कही है, भाई आपने एक मॉडिफाइड रूप में कह दिया, मैं इससे भी नीचे आता हूं, बेसिक्स में आता हूं। ये मेरा फोन है, आपको दे दिया, आप मेरे प्रति मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, आदर भाव रखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप इसको संभाल के रखेंगे, ये मुझे प्रभु जी ने गिफ्ट किया, गलत तो नहीं कह रहा मैं, गिफ्ट किया। भौतिक प्रकृति से ये शरीर बना है, ये भगवान की गिफ्ट है आपको, उस गिफ्ट को स्वस्थ रखना जिम्मेदारी है कि नहीं है, उसको ठीक से चलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है, भगवान की दी हुई वस्तु है, भगवान के ही जो है एक अंग है भौतिक प्रकृति, भगवान का ही अंश है भौतिक प्रकृति। क्या उस भौतिक प्रकृति से बने हुए शरीर को जो हमें प्रदान किया गया है उसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, बेसिक है ये, बेसिक। फिर हम कहेंगे जिम्मेदारी है, इसलिए जिम्मेदारी है कि भाई ठीक रहेंगे तो भजन करेंगे, ठीक रहेंगे तो भोग लगाएंगे, ठीक, पर ठीक रखना जिम्मेदारी क्यों है, कि भगवान की दी हुई वस्तु है, गिवन बाय कृष्णा, उनका अंश है भौतिक प्रकृति, और भगवान स्वयं हृदय में विराजमान है देखने के लिए कि ये मेरे अंश को ठीक से रखता है कि नहीं रखता, ठीक से मेंटेन करता है कि नहीं करता है, भगवान विराजमान है वो देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है रोज मंजन करता है कि नहीं करता, रोज स्नान करता है कि नहीं करता, खाने से पहले हाथ धोता है कि नहीं धोता, खाने के बाद हाथ धोता है कि नहीं धोता, ही इज वॉशिंग एवरीथिंग। तो उस भौतिक प्रकृति को सही सलामत रखना जिससे कि शरीर बना है हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए है कि वो भगवान का दिया हुआ एक हमारे पास उपहार है, गिफ्ट है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक से रखना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।